ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। आम आदमी पार्टी ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी से गठबंधन की संभावना से इनकार कर दिया है। कांग्रेस भी सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी 8 दिसंबर से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेगी और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़े नार्को सिंडिकेट का पर्दाफाश किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चारू सक्सेना। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने जबरन वसूली के एक मामले और गैंगस्टर कपिल सांगवान के साथ कथित संबंधों के सिलसिले में आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने जांच के दौरान नरेश बालियान और लंदन में गैंगस्टर कपिल सांगवान के बीच बातचीत का ऑडियो क्लिप बरामद करने के बाद ये गिरफ्तारी की है। इस कथित बातचीत में व्यवसायियों से फिरौती के पैसे इकट्ठा करने के बारे में चर्चा शामिल थी। दिल्ली पुलिस ने बताया कि आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान और गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के बीच कथित बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग के संबंध में जांच चल रही है। मीडिया को संबोधित करते हुए उपायुक्त संजय कुमार सेन ने कहा कि गैंगस्टर के ऑडियो और आप विधायक से उसके संबंध की जांच की जा रही है।
वर्तमान मामले में कपिल सांगवान अलियास नंदू और आम आदमी पार्टी के एमएलए नरेश बालियान के गठजोड़ का साक्ष्य जो दोनों के बीच की बातचीत का ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। विदेश में छुपकर बैठे इन गैंगस्टर्स के खिलाफ जो दिल्ली पुलिस की कार्यवाही जारी है उसका एक फोकस इनके मददगारों का यहाँ पता लगाना भी है।
उधर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस द्वारा नरेश बालियान की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि गैंगस्टर पर कार्रवाई करने की जगह दिल्ली पुलिस ने उनके विधायक को ही गिरफ्तार कर लिया है।
एमएलए नरेश बालियान कपिल सांगवान का विक्टिम है। वहां से उनको इस तरह की कई धमकियां आई और उन्होंने कई चिट्ठियां दिल्ली पुलिस को लिखी कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, मुझे लगातार धमकियां आ रही हैं। उस पे कार्रवाई करने की बजाय कल दिल्ली पुलिस ने नरेश बालियान को गिरफ्तार कर लिया।
दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की रंगदारी मामले में आलोचना की है। उन्होंने गिरफ्तार आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बालियान और गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के बीच कथित बातचीत के सिलसिले आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी दी। श्री सचदेवा ने कहा कि वे कल दिल्ली पुलिस आयुक्त से मिलकर मामले की गहन जांच की मांग करेंगे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में श्री सचदेवा ने कहा कि वे इस संबंध में पुलिस आयुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपेंगे।
जिस तरह का अवैध वसूली गिरोह दिल्ली में काम कर रहा था और अरविंद केजरीवाल की सरकार के विधायक उसके मुख्य अभियुक्त हैं और हमारी जानकारी के हिसाब से उसमें और भी कई लोग शामिल हो सकते हैं, तो हम अपनी तरफ से ज्ञापन दे रहे हैं पुलिस कमिश्नर को कि इस जांच का दायरा बढ़ाया जाए और जितने लोग दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
श्री सचदेवा ने ये भी बताया कि आम आदमी पार्टी सरकार ने दीपावली तक शहर की हर सड़क का निर्माण और मरम्मत करने का वादा किया था लेकिन अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी से गठबंधन की संभावना से इनकार कर दिया है। श्री केजरीवाल ने ये जानकारी एक प्रेस वार्ता में दी। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। प्रेस वार्ता के दौरान श्री केजरीवाल ने राजधानी में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। उधर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी कहा है कि कांग्रेस आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी सभी 70 विधानसभाओं पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में पार्टी को आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के कारण खामियाजा उठाना पड़ा था।
हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि नहीं चाहते, हमने स्पष्ट रूप से मना किया है कि कोई गठबंधन हम नहीं करने जा रहे, हम 70 की 70 विधानसभाओं पे मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं।
दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने आज बस मार्शलों की नियुक्ति को लेकर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने कहा कि आतिशी ने अपनी चिट्ठी में कहा कि बस मार्शलों की तैनाती से पहले बसों में यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए हर दिन एक मुश्किल का दिन होता है। انہوں نے کہا کہ بسوں میں 10,000 سے زیادہ مارشلوں کی موجودگی نے اس استھتی کو بدل دیا تھا۔ مکھیہ منتری نے اپنے پتر میں کہا کہ دلی کے بس مارشل اور ان کے پریوار اپ راجیہپال کی سویکرتی کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہیں دلی بھاجپا ادھیکش ویریندر سچدیوا نے کہا کہ عام آدمی پارٹی سرکار نے 10,000 سے ادھک بس مارشلوں کو سیوا سے ہٹایا ہے اور دلی سرکار ان کی بحالی کی مانگوں کے پرتی سمویدنشیل نہیں ہے۔ प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी भाजपा आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों के मद्देनजर 8 से 20 दिसंबर तक एक परिवर्तन यात्रा निकालेगी। इस यात्रा का संचालन भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय करेंगे।
इस यात्रा के तहत भारतीय जनता पार्टी राजधानी की सभी 70 विधानसभा सीटों पर पदयात्रा निकालेगी। पार्टी की 7 अलग अलग टीमें दिल्ली के 7 लोकसभा क्षेत्रों में एक साथ यात्रा की शुरुआत करेंगी। यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए श्री उपाध्याय ने बताया,
हम सभी समाज के वर्गों के साथ सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी स्वरूप इसमें रहेगा। समाज का जो विशिष्ट वर्ग है, RWAs हैं, MTAs हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, उन सब लोगों से भी हम संवाद करेंगे।
इससे पहले दिल्ली विधानसभा की सभी समितियों की संगठनात्मक बैठक भी नई दिल्ली स्थित पार्टी के मुख्यालय में हुई। बैठक में पार्टी के प्रचार अभियानों और आगामी कार्यक्रमों पर व्यापक चर्चा हुई। प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA अनाधिकृत कॉलोनी के निवासियों के लंबित PM उदय आवेदनों में तेजी लाने और उसके निष्पादन के लिए विशेष सिंगल विंडो कैंप आयोजित कर रहा है। ये कैंप 29 दिसंबर तक प्रत्येक शनिवार और रविवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। कैंप का आयोजन राजधानी के कई इलाकों में किया जा रहा है। आवेदक अपने पास के कैंप में लंबित PM उदय आवेदन के निपटारे से संबंधित कार्य के लिए जा सकते हैं। वहीं उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा श्याम विहार में प्रधानमंत्री उदय योजना के तहत लगाए गए शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान पश्चिमी दिल्ली से कमलजीत सहरावत और भाजपा नेता कैलाश गहलोत भी मौजूद रहे। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि PM उदय योजना का उद्देश्य उन गरीब लोगों की सहायता करना है जिनके पास मकान है लेकिन वे आवश्यक औपचारिकताएं पूरी नहीं कर पाए हैं।
ये PM उदय स्कीम है जो जिसको कुछ समय में पहले लॉन्च किया गया था लेकिन उसके अंदर जो प्रोसीजर्स थे जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उन फॉर्मेलिटीज को पूरा नहीं कर पाते थे, तो ये डिसाइड किया गया वहीं पर कैंप लगाए जाएं। उस कैंप के अंदर सारी सुविधाएं हो, हेल्प डेस्क हो, लोग आएं अपनी समस्या को बताएं।
एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम एड्स के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए आज विश्व एड्स दिवस मनाया गया। ये दिन लोगों को HIV के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने और HIV पीड़ित लोगों के प्रति समर्थन व्यक्त करने का भी अवसर प्रदान करता है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन 1992 से हर वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मना रहा है। ये आयोजन 2030 तक एड्स को समाप्त करने के वैश्विक लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में आ रही चुनौतियों का सामना करने में सहायक हो रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज विश्व एड्स दिवस के अवसर पर लोगों से HIV एड्स संक्रमित व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील व्यवहार और संक्रमित व्यक्तियों के मानवाधिकारों की रक्षा करने की अपील की है।
यह दिवस अपने आप को HIV से प्रोटेक्ट करने के लिए भी कमिटमेंट है। जो HIV के साथ जी रहे हैं उनको हम सामान्य जीवन में अपने साथी के रूप में देखें। आज का थीम है टेकिंग द राइट पाथ, यानी लोगों को उनके अधिकारों के साथ उस रास्ते पर ले जाना है जो मुख्य धारा में उनको शामिल कर सके, इसको भी ध्यान में रखने का दिवस है।
श्री नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार ने HIV सुरक्षा अधिनियम 2017 के माध्यम से संक्रमित व्यक्तियों के साथ किसी भी भेदभाव को रोकने का काम किया है। श्री नड्डा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने जांच और उपचार की नीति पर अमल किया। उन्होंने कहा कि इसके परिणाम स्वरूप अब देश में एड्स से होने वाली मौत में 79% की कमी आई है और नए संक्रमण भी 44% कम हुए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि भारत ने इस बीमारी की सबसे सस्ती और कारगर दवा बनाने में सफलता प्राप्त की है। स्वास्थ्य मंत्री ने आशा व्यक्त की कि भारत वर्ष 2030 तक इस बीमारी से मुक्त हो जाएगा। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि बीमारी से डरें, मरीज से नहीं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि भारतीय इतिहास की पुस्तकों में देश के नायकों के साथ अन्याय किया गया है। वे आज नई दिल्ली में स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप की 138वीं जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश की अंतरात्मा पर आघात है। श्री धनखड़ ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता की नींव राजा महेंद्र प्रताप सिंह और अन्य गुमनाम नायकों जैसे लोगों के सर्वोच्च बलिदान पर टिकी है। उन्होंने कहा कि राजा महेंद्र प्रताप जन्मजात राजनयिक, राष्ट्रभक्त, दूरदर्शी और राष्ट्रवादी थे। श्री धनखड़ ने इतिहास की पुस्तकों में कुछ राष्ट्रीय नायकों की अनदेखी की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़े नार्को सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 15 किलोग्राम से ज्यादा मादक पदार्थ बरामद किए हैं, जिसकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपए है। पुलिस ने बताया कि मामले में 3 विदेशी नागरिकों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि ये सिंडिकेट नेपाल और हिमाचल प्रदेश से दिल्ली NCR में मादक पदार्थों की सप्लाई करता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा सुरक्षा बल BSF को आज इसके स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि BSF का देश की रक्षा पंक्ति में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि ये बल साहस, समर्पण और असाधारण सेवा का प्रतीक है। उन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा और संरक्षा में BSF की सतर्कता और साहस की सराहना की। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया और मनोरंजन संघ के सहयोग से नई दिल्ली में वेव्स एनीमे और मंगा प्रतियोगिता का आयोजन किया। कार्यक्रम में जापानी शैली की कॉमिक्स मंगा डिजिटल कॉमिक्स वेबटून और जापानी शैली का एनिमेशन एनीमे सहित विभिन्न श्रेणियों में लगभग 199 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसमें 28 कॉस्प्ले और वॉइस एक्टिंग प्रतिभागियों ने भी भाग लिया। इस कार्यक्रम में भारत के पहले एनीमे ट्रायो की एक झलक भी दिखाई गई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत को मंगा एनीमे वेबटून के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना तथा देश की रचनात्मक लोगों को प्रेरित करना और सशक्त बनाना है। सरकार ने घोषणा की है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने टेक्सस संदेशों के सुरक्षित ट्रांसमिशन और वाणिज्यिक संदेशों के प्रेषकों को पता लगाने को सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय लागू किए हैं। दक्षिण मध्य रेलवे ने यात्रियों को स्वच्छ चादरें उपलब्ध कराने के लिए आउटसोर्स सेवाओं को के पूरक के रूप में सिकंदराबाद विभागीय लॉन्ड्री सहित 7 स्थानों पर मशीनीकृत लॉन्ड्री स्थापित की है। इसकी क्षमता 2 टन और काचीगुड़ा बूट लॉन्ड्री की क्षमता 12 टन प्रतिदिन है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि वर्तमान में विशेष रेलगाड़ियों सहित 116 रेलगाड़ियों की सभी AC डिब्बों में प्रतिदिन स्वच्छ बेडरोल दिया जाता है। इसमें औसतन 38,000 ऊनी कंबल और 1,52,000 बेडरोल शामिल हैं। दिल्ली में आज मौसम साफ रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में हल्की धुंध छाए रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। आम आदमी पार्टी ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी से गठबंधन की संभावना से इनकार कर दिया है। कांग्रेस भी सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी 8 दिसंबर से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेगी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़े नार्को सिंडिकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 15 किलोग्राम से ज्यादा मादक पदार्थ बरामद किए, जिसकी कीमत करीब 3 करोड़ है। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।